क्या आप जानते हैं कि आप परी कथा की कहानियों को एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन और कई अन्य पॉडकास्टिंग एप्स और वेबसाइटों पर सुन सकते हैं? अधिक जानने के लिए बालगाथा.com पर जाएं।
परीक्षित का श्राप। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पोते थे। उसने पांडवों के स्वर्ग जाने के बाद कौरव के राज्य पर शासन किया। परीक्षित एक बहादुर योद्धा थे, सिर्फ सम्राट थे और अपने लोगों द्वारा पसंद किए जाते थे। उसे शिकार का बहुत शौक था। एक दिन जंगल में शिकार करते समय वह अपने अनुयायियों से अलग हो गया था। रास्ते में उनकी मुलाकात कलयुग से हुई। राजा परीक्षित ने उससे पूछा कि वह कौन है। कलयुग ने कहा, यह युग बदलने का समय था, क्योंकि द्वापर युग समाप्त हो गया था और कलयुग शुरू होने वाला था। वह परीक्षित के राज्य में प्रवेश करने आया था। राजा परीक्षित ने कलयुग को अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने के लिए कहा। कलयुग ने कहा, तब मैं कहां रहूं? राजा परीक्षित ने कहा, कृपया मेरे मुकुट मेरे सिर के ऊपर, वहां रहिए। तो इसे कलयुग कहा जाए। राजा परीक्षित अभी भी अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसे भूख भी लगी थी। वह एक धर्मशाला में आया था। एक ऋषि एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था। राजा ने खुद से कहा, मेरी भूख और प्यास को दूर करने के लिए कुछ साधन है? वह फिर ऋषि के पास गया और विनम्रता पूर्वक उनसे भोजन और पानी के लिए अनुरोध किया। ऋषि गहरे ध्यान में थे और राजा की उपस्थिति से अनजान थे। राजा अत्यंत क्रोधित था। उसने देखा कि पास में घास में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। उसने अपने धनुष के कोने से सांप को उठा लिया और ऋषि को इस अशुद्ध वस्तु के साथ माला पहनाई और जंगल में छोड़ दिया। ऋषि चुप रहे, अपना ध्यान जारी रखा। इस ऋषि का एक पुत्र था जिसका नाम श्रृंगिन था। उसके दोस्त ने उसे मृत सांप की घटना सुनाई। राजा के कार्यों के बारे में सुनकर श्रृंगिन बेहद क्रोधित हुआ। उन्होंने उसे शाप दिया, अपनी शक्ति के अहंकार के कारण परीक्षित ने मेरे पिता को एक मरे हुए सांप के साथ माला पहनाई है और उन्हें अपने पाप के लिए भुगतान करना होगा। वह आज से सातवें दिन तक्षक द्वारा मर जाएंगे। जब ऋषि ने सुना कि उनके पुत्र श्रृंगिन ने परीक्षित को शाप दिया है तो वह दुखी हुए। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, जब मैंने खुद राजा परीक्षित को अपमान के लिए माफ कर दिया है तो तुमने उसे शाप क्यों दिया? क्या तुम नहीं जानते कि यह न्यायी और शानदार राजा है? वह उस दिन थका हुआ था और भूखा भी था। यह अपराध है। इस एक उदाहरण को छोड़कर वह एक महान शासक रहा है। एक ब्राह्मण का यह कर्तव्य है कि कि वह अपने क्रोध और आवेश को सख्त नियंत्रण में रखे। यह स्पष्ट है कि आपको मानसिक परिपक्वता तक पहुंचना बाकी है। ऋषि, आपकी शिक्षा इसलिए अधूरी है। जंगल में जाइए और निरंतर तपस्या करके अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखिए। ऋषि ने तब अपने शिष्य गुरुमुख को बुलाया और कहा, राजा परीक्षित के महल में जाओ, मेरी बात मान लो, मुझे बताओ कि वह मेरे पुत्र श्रृंगिन द्वारा शापित हो गया है, जो राजा द्वारा किए गए अपमान को सहन करने में असमर्थ था। उसे शाप के अनुसार राजा परीक्षित अब से सातवें दिन से पहले मर जाएगा। राजा को सभी सावधानी बरतने के लिए कहो। शिष्य ने संदेश को राजा तक पहुंचाया। शाप के बदले राजा ने ऋषि को जो अपमान दिया था उसके लिए राजा और अधिक दुखी था। उसने शिष्य को धन्यवाद दिया और उसे ऋषि को अपना अभिवादन बताने के लिए कहा। फिर उसने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और उन्हें शाप के बारे में बताया। रातों रात राजा के लिए एक शानदार नए महल का निर्माण किया गया। इसे एक ऊंचे खंभे पर खड़ा किया गया था और खंभे का आधार एक खंदक के अंदर था। सांपों को हटाने की कला में कुशल कई योद्धाओं और ब्राह्मणों को राजा की रक्षा के लिए महल के चारों ओर रखा गया था। एक घोषणा की गई थी कि जिस किसी को भी सांप जहर का मुकाबला करने की कला में कौशल है उसे राजा को रिपोर्ट करना चाहिए। उन्हें उनकी कला के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। राजा ने सारा समय इस महल में बिताया जो ब्राह्मण से घिरा हुआ था। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। राजा ने वेदों और पुराणों का पाठ भी सुना। इस बीच शाप के अनुसार तक्षक परीक्षित से मिलने के लिए जा रहा था। उनकी मुलाकात ऋषि कश्यप से हुई। वे दोनों एक साथ यात्रा करने लगे। कश्यप ने उल्लेख किया कि वह राजा सर्प के काटने से मृत्यु से बचाने के लिए परीक्षित के राज्य का दौरा कर रहे थे। उसने दावा किया कि वह जहर का मुकाबला करने की कला जानता था, जिससे वह जहर की शक्ति की परवाह किए बिना मौत को रोक सकता था। तक्षक ने अपना असली रूप ग्रहण किया और कहा, मैं तक्षक नागों का राजा और उनके बीच सबसे जहरीला हूं। मुझे संदेह है कि क्या कोई भी मेरे जहर का प्रतिकार कर सकता है। मुझे यकीन है कि आप असफल होंगे। तब कश्यप ने तक्षक को अपनी ताकत साबित करने के लिए कहा। तक्षक ने कहा, इस बरगद के पेड़ को देखो, यह एक बहुत बड़ा पेड़ है, पूरी तरह खिलने में यह मेरे जहर से नष्ट हो जाएगा। फिर उसने अपने नुकीले पेड़ को काट दिया। उसके विष का ऐसा गुण था कि पेड़ तुरंत जलकर राख हो गया। ब्राह्मण पहले पेड़ के आसपास गया, फिर उसने सांप के जहर का मुकाबला करने के लिए मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। फिर उसने अपने कमंडल से थोड़ा पानी निकाला और राख पर छिड़क दिया। ब्राह्मण पहले पेड़ के आसपास गया, फिर उसने सांप के जहर का मुकाबला करने के लिए मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। फिर उसने अपने कमंडल से थोड़ा पानी निकाला और राख पर छिड़क दिया। सेकंड के भीतर राख में ताजे अंकुर दिखाई देने लगे। एक मिनट में पेड़ अपने पवित्र अवशेषों से बढ़ने लगा। अंत में पेड़ ठीक वैसा ही खड़ा था जैसा तक्षक ने उसे नष्ट किया था। तक्षक ने कहा, हे ऋषि, मुझे आपकी महानता और शक्ति का एहसास हुआ। मैं विनम्रता पूर्वक आपको नमन करता हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप यह जान ले कि परीक्षित इस दिन मेरे हाथों मरने के लिए अभिशप्त है। यदि आप प्रयास करते हैं तो उसे पुनर्जीवित करें। मंत्र का जाप करते समय आपके मन में निश्चित रूप से संदेह का तत्व होगा। यदि संदेह एक अनुष्ठान में प्रवेश करता है तो एक अच्छा मौका है कि मंत्र काम नहीं करेगा, यहां तक कि आपका ज्ञान भी दांव पर होगा। सबसे अच्छा है कि आप वापस जाते हैं। यदि आप धन प्राप्त करने के लिए परीक्षित की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको उससे अधिक धन दे सकता हूं। निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच ली। ऋषि ने कुछ देर सोचा। उन्होंने अपनी योगिक शक्तियों का इस्तेमाल किया और पाया कि परीक्षित का अंत निकट था और इसलिए उन्होंने घर लौटने का फैसला किया। अब तक्षक के लिए रास्ता साफ था। उन्होंने अपने कुछ साथी सांपों को भेजा जो ब्राह्मणों के रूप में प्रच्छन्न थे, राजा परीक्षित से मिलने के लिए। उसने खुद को एक कीट में बदल दिया और एक फल में प्रवेश किया जो वे ले जा रहे थे। नकली ब्राह्मणों को राजा के पास ले जाया गया। जैसा कि भाग्य में होगा, राजा ने ठीक उसी फल को चुना जिसमें तक्षक मौजूद था। उसने एक काट लिया तो कीट फल से बाहर आ गया। सूरज सातवें दिन अस्त हो रहा था। परीक्षित ने सोचा कि वह श्रृंगिन के शाप से बच गया था। उन्होंने मजाक में कहा, ऋषि के श्राप को काम करने दो, मैं मान लूंगा कि यह छोटा सा कीट तक्षक है जो नागों का राजा है। क्या वह मुझे काट सकता है और मुझे मेरी मृत्यु के लिए भेज सकता है? फिर उसने कीट को अपनी गर्दन पर रखा। एक पल में तक्षक ने एक महान सर्प के रूप में अपना रूप धारण कर दिया। फिर उसने खुद को राजा के चारों ओर घुमाया और परीक्षित के गले में अपने महान नुकीले टुकड़े डाले। शाप के अनुसार सांप के जहर के कारण राजा मृत्यु हो गया। उसका बेटा जन्मेजय, जो उस समय एक बच्चा था, को राज्य विरासत में मिला। जब वह बड़ा हुआ और अपने पिता की मृत्यु का कारण पता किया, तो उसने बदला लेने के लिए एक महान सांप बलिदान का प्रदर्शन किया। लेकिन ये कहानी कल के लिए है। आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया अपना रिव्यू gathastory.com पर छोड़ दें। ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए सुने gathastory.com।